हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 157। आदित्य, देखो देखो, तुम अच्छी तरह से जानती हो, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। और तुम मुझे ये ऐसे बोलते हुए, सुनैना जहाँ खड़ी थी वहाँ से जितना पीछे जा सकती थी उतना पीछे हो गई, लेकिन पीछे दीवार थी तो वो चाह कर भी और ज्यादा पीछे नहीं जा सकी, इसलिए रुककर अपनी आँखें कस कर बंद करते हुए बोली। उसे इस तरह घबराता देख आदित्य फिर से उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और उसकी आंखें बंद करते ही अपने हाथ से उसके चेहरे पर आए बाल किनारे करते हुए एक नज़र भरकर उसकी तरफ देखा, फिर काफ़ी प्यार से आगे आकर उसके माथे पर किस किया और किस करके वापस आकर आराम से पैर पर पैर रखकर बैठ गया। सुनैना को माथे पर किस के बाद थोड़ी देर तक अपने आसपास किसी के होने का एहसास नहीं हुआ, तो वो धीरे से अपनी एक आंख खोली तो उसे अपने से दूर बेड पर आराम से पैर पर पैर रखकर उसकी तरफ देखता हुआ बैठा आदित्य नजर आया, तो वो एक गहरी राहत भरी सांस भरी और अपने माथे और चेहरे पर आया हुआ पसीना अपने हाथ से पोंछा। क्या हुआ, नज़दीकी भी बर्दाश्त नहीं होती और दूर जाना भी बुरा लगता है, ऐसे तो नहीं चल पाएगा ना वाइफी? सुनैना जैसे ही उसकी तरफ देखी, आदित्य काफी शरारत से मुस्कुराते हुए शौक भरी नज़रों से सुनैना की तरफ देखते हुए बोला। तो आदित्य को इस तरह करते देख सुनैना समझ गई कि कुछ नहीं, आदित्य बस उसे परेशान कर रहा है और उसकी कमजोरी का फायदा उठा रहा है, इसलिए वो अपने आप को समझाते हुए फिर से एक गहरी सांस लेते हुए नॉर्मल होकर आगे बढ़ी और आदित्य के सामने आकर खड़े होते हुए कहा, हाँ तो दूर खुद से और इस घर से जाने भी नहीं दोगे और साथ रहकर मेरे सवालों के जवाब और खुद को जानने का मौका भी नहीं दोगे, तो ऐसा भी नहीं चलेगा मिस्टर हस्बैंड? बताया तो है मैंने तुम्हें इतना कुछ और तुम्हें पता भी तो है, फिर और क्या? आदित्य सुनैना के इस सवाल पर अब उससे नजरें चुराते हुए बोला, क्योंकि वो समझ गया कि उसकी परेशान करने वाली ट्रिक अब काम नहीं करने वाली, क्योंकि सुनैना समझ चुकी थी। हाँ लेकिन आदित्य, तुम बोलते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो और अभी मैंने तुम्हारी आंखों में देखा, मैंने जब यहाँ से चले जाने की बात की तो तुम वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो अगर तुम मुझे दूर नहीं जाने देना चाहते तो फिर तुम्हें खुद को बदलना होगा, तुम ऐसे मिस्टीरियस और अपने शेल में हमेशा नहीं रह सकते, बताओ क्यों हो तुम ऐसे, क्यों तुम सबके साथ नहीं रहते? सुनैना उसकी आंखों में झांक कर देखने की कोशिश करते हुए काफी जोर देकर उससे ये सारे सवाल किए और उसके पूछने के अंदाज से साफ पता चल गया कि बिना जवाब लिए तो वो आज नहीं मानने वाली थी। सुनैना के ये सारे सवाल सुनते ही आदित्य के दिमाग में बहुत सारी बातें चलने लगीं और उन सब बातों को सोचते हुए उसके हाथ पैर कांपने लगे और चेहरे पर पसीना आने लगा। ये सब सुनैना को भी नजर आया और वो कहीं ना कहीं समझती भी है कि आदित्य को ऐसा क्यों फील हो रहा है, क्योंकि भवानी काका उसे बता चुके थे कि उसे काफी कुछ झेलना और सुनना पड़ा है। और साथ ही
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 177। आदित्य, देखो देखो, तुम अच्छी तरह से जानती हो, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था और तुम मुझे ये ऐसे बोलते हुए, सुनैना जहाँ खड़ी थी वहाँ से जितना पीछे जा सकती थी उतना पीछे हो गई, लेकिन पीछे दीवार थी तो वो चाहकर भी और ज्यादा पीछे नहीं जा सकी, इसलिए रुककर अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए बोली। उसे इस तरह घबराता देख आदित्य फिर से उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और उसकी आंखें बंद करते ही अपने हाथ से उसके चेहरे पर आए बाल किनारे करते हुए एक नज़र भर कर उसकी तरफ देखा, फिर काफी प्यार से आगे आकर उसके माथे पर किस किया और किस करके वापस आकर आराम से पैर पर पैर रखकर बैठ गया। सुनैना को माथे पर किस के बाद थोड़ी देर तक अपने आसपास किसी के होने का एहसास नहीं हुआ, तो वो धीरे से अपनी एक आंख खोली तो उसे अपने से दूर बेड पर आराम से पैर पर पैर रखकर उसकी तरफ देखता हुआ बैठा आदित्य नजर आया, तो वो एक गहरी राहत भरी सांस भरी और अपने माथे और चेहरे पर आया हुआ पसीना अपने हाथ से पोंछा। क्या हुआ, नज़दीकी भी बर्दाश्त नहीं होती और दूर जाना भी बुरा लगता है, ऐसे तो नहीं चल पाएगा ना वाइफी? सुनैना जैसे ही उसकी तरफ देखी, आदित्य काफी शरारत से मुस्कुराते हुए शोक भरी नज़रों से सुनैना की तरफ देखते हुए बोला। तो आदित्य को इस तरह करते देख सुनैना समझ गई कि कुछ नहीं, आदित्य बस उसे परेशान कर रहा है और उसकी कमजोरी का फायदा उठा रहा है, इसलिए वो अपने आप को समझाते हुए फिर से एक गहरी सांस लेते हुए नॉर्मल होकर आगे बढ़ी और आदित्य के सामने आकर खड़े होते हुए कहा, हाँ तो दूर खुद से और इस घर से जाने भी नहीं दोगे और साथ रहकर मेरे सवालों के जवाब और खुद को जानने का मौका भी नहीं दोगे, तो ऐसा भी नहीं चलेगा मिस्टर हस्बैंड। बताया तो है मैंने तुम्हें इतना कुछ और तुम्हें पता भी तो है, फिर और क्या। आदित्य सुनैना के इस सवाल पर अब उससे नजरें चुराते हुए बोला, क्योंकि वो समझ गया कि उसकी परेशान करने वाली ट्रिक अब काम नहीं करने वाली, क्योंकि सुनैना समझ चुकी थी। हाँ लेकिन आदित्य, तुम बोलते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो और अभी मैंने तुम्हारी आंखों में देखा, मैंने जब यहाँ से चले जाने की बात की तो तुम वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो अगर तुम मुझे दूर नहीं जाने देना चाहते तो फिर तुम्हें खुद को बदलना होगा। तुम ऐसे मिस्टीरियस और अपने शेल में हमेशा नहीं रह सकते। बताओ क्यों हो तुम ऐसे, क्यों तुम सबके साथ नहीं रहते। सुनैना उसकी आंखों में झांक कर देखने की कोशिश करते हुए काफी जोर देकर उससे ये सारे सवाल किए और उसके पूछने के अंदाज से साफ पता चल गया कि बिना जवाब लिए तो वो आज नहीं मानने वाली थी। सुनैना के लिए सारे सवाल सुनते ही आदित्य के दिमाग में बहुत सारी बातें चलने लगी और उन सब बातों को सोचते हुए उसके हाथ पैर कांपने लगे और चेहरे पर पसीना आने लगा। ये सब सुनैना को भी नजर आया और वो कहीं ना कहीं समझती भी है कि आदित्य को ऐसा क्यों फील हो रहा है, क्योंकि भवानी काका उसे बता चुके थे कि उसे काफी कुछ झेलना और सुनना पड़ा है और साथ ही अकेलेपन की वजह से भी इंसान ऐसा हो जाता है अक्सर। लेकिन सुनैना उसके इस डर को उस पर हावी नहीं होने देना चाहती थी और उसे यही समझाना चाहती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, जो लोग उसे बोलते हैं उसके बारे में बोलते हैं वो हमेशा सच नहीं होता। इसके लिए सुनैना आगे आकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहती हैं, तुम मुझे बता सकते हो, मुझ पर विश्वास कर सकते हो और बताओ क्या सोच रहे हो अभी। सुनैना की बात सुनकर काफी उम्मीद भरी निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए आदित्य उससे कहा, वो मुझे किसी के आसपास नहीं रहना चाहिए सुनैना, वो मैं नहीं बता सकता सच में। अच्छा तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना सच पता चलने के बाद भी। नहीं नहीं, या तो फिर तुम चली ही जाना, क्योंकि मेरे साथ रहने वालों का हमेशा बुरा ही होता है, या फिर वो हमेशा के लिए ही मुझे छोड़कर चले जाते हैं, तो तुम नहीं नहीं, तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, मेरे लिए तुम्हारा सेफ रहना सबसे जरूरी है, मेरे साथ रहना नहीं, मैं तो। सुनैना के इस तरह पूछने पर आदित्य बड़बड़ाते हुए उससे ये सब कुछ बोला और वो जो कुछ भी बोल रहा था उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहा है। रिलैक्स रिलैक्स आदित्य, ऐसा कुछ भी नहीं है, और तुम क्यों इन सब चीजों को अपने दिमाग पर इतना हावी होने देते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम किसी के लिए भी अनलकी नहीं हो और तुम्हारे साथ रहने वाले के साथ कुछ भी बुरा नहीं होता, कम से कम तुम्हारी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं, तो ये सारी बेकार की बातें अपने दिमाग से निकाल दो। सुनैना आदित्य का हाथ अपने हाथों में कस कर थामते हुए एकदम मजबूत लहजे में उससे बोली, नहीं नहीं ऐसा ही है, ऐसा है, सबसे पहले मामा मुझे छोड़कर चली गई, पता है मैं माँ से बहुत प्यार करता था और हमेशा उनके साथ ही रहता था, और उसके बाद भाई, तुम्हें पता है हम दोनों बहुत छोटे थे और एक साथ ही थे जब वो एक्सीडेंट हुआ, लेकिन मैं बच गया और भाई वो नहीं बच पाया, और फिर डैड, जब मैं उनके क्लोज होने लगा था तभी उनका भी एक्सीडेंट, या फिर शायद सुसाइड, क्या कहूँ मैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा सुनैना, और इन सब चीज़ों के बारे में बात करना मुझे बहुत तकलीफ देता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ। कांपती हुई आवाज में सुनैना को ये सब कुछ बताते हुए आदित्य आखिरकार टूट गया और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और वो चाहकर भी आगे कुछ नहीं बोल पाया। सुनैना ये सारी बातें काफी ध्यान से सुनी, लेकिन सब कुछ बताते हुए आदित्य की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि सुनैना उसके शब्दों पर ठीक तरह से ध्यान नहीं दे पाई और उसके सिर और पीठ पर हाथ फेरते हुए फिर से उसे अपने गले से लगा लिया, और आदित्य भी इस बार उसे पूरे हक से कसकर पकड़ लिया, और इस बार आदित्य के आंसू सुनैना के कंधों पर फिसलने लगे, जिन्हें आदित्य रोकने की बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहा था लेकिन आखिरकार रोक नहीं पाया, और सुनैना की बाहों में आते ही वो रोने लगा। सुनैना अभी भी काफी प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेर रही थी और हाथ फेरते हुए बोल रही थी, हाँ मुझे पता है तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन पता है ये सब बातें शेयर करने के बाद तुम्हें काफी अच्छा भी लगेगा, और मैं ये चाहती थी,
कोई बात नहीं, रिलैक्स आदित्य, कुछ भी नहीं हुआ और मैं हूँ ना यहाँ तुम्हारे साथ में, कहीं भी नहीं जाऊँगी। आदित्य सुनैना की बातें सुना, लेकिन ये सारी बातें जैसे इस वक्त उसके कान से टकराकर वापस जा रही थी, क्योंकि उसे समझ में कुछ नहीं आ रहा था, या फिर शायद वो अभी कुछ समझने वाली हालत में ही नहीं था। और सिर्फ सुनैना के करीब होकर उसके इस तरह गले लगे रहना आदित्य को सुकून दे रहा था, और उसकी हालत थोड़ी सी ठीक हो रही थी, इसलिए सुनैना ने भी उसे खुद से दूर नहीं किया और उसे उसी तरह अपने गले लगी रहने दिया और थोड़ी देर बाद उसे समझा बुझाकर वहीं पर लिटा दिया। लेकिन आदित्य ने उसे खुद से दूर नहीं जाने दिया तो सुनैना को भी उसके पास ही लेटना पड़ा, और आदित्य अभी भी सुनैना का हाथ पकड़े हुए था और उसके लेटते ही उसे दोबारा पकड़कर एकदम करीब कर लिया, इस तरह से जैसे कि वो उसे छोड़ेगा तो वो कहीं गायब हो जाएगी। 5-5-5। नैना आज सारा दिन अक्षत के घर में काफी ज्यादा बोर हो रही थी। वैसे तो अक्षत का घर काफी बड़ा और शानदार बंगला था, जहाँ रहना हर किसी मिडिल क्लास या नॉर्मल आदमी का सपना ही होता है, और नैना को तो किस्मत से ही वहाँ रहने को मिल गया था, और वहाँ पर करने को भी काफी कुछ था। काफी सारे नौकर चाकर और वर्किंग स्टाफ था, उसके अलावा हर रूम में टीवी था, और अक्षत ने नैना को उसका मोबाइल फोन भी दिला दिया था, और उसके साथ बाहर गार्डन भी था जहाँ पर नैना टहलने जा सकती थी। लेकिन ये सब करके भी नैना पिछले दो दिनों में काफी ज्यादा ऊब चुकी थी।
नैना को वो बंगला अपने लिए किसी खूबसूरत पिंजरे वाली कैद की तरह लग रहा था, जहाँ किसी ने उसे जोर जबरदस्ती से बांधकर तो नहीं रखा था, लेकिन फिर भी वो चाहकर भी बाहर की दुनिया में नहीं जा सकती थी। और उसके पीछे था वो डर जिसका सामना वो पहले भी एक बार कर चुकी थी, और वो था वो अनजान आदमी जिसने नैना को किडनैप करके अपने पास रखने की कोशिश की थी। और नैना उसकी शक्ल तो दूर, नाम तक नहीं जानती थी, और ये भी नहीं कि वो आदमी कितना खतरनाक है। जब तक अक्षत भी वहाँ पर बंगले में उसके साथ उसके आसपास होता था, तब तक तो नैना को काफ़ी अच्छा लगता था, क्योंकि उसे एक कंपनी मिल जाती थी बात करने के लिए, तो वो बिल्कुल भी बोर नहीं होती थी। लेकिन अक्षत के बिना तो ये इतना बड़ा घर जैसे उसे काटने को दौड़ता था, और मेड और कुक की वजह से नैना को खाना पीना भी सब टाइम से मिल जाता था, और उसे अपने लिए कुछ बनाना भी नहीं पड़ता था। नैना को इतनी ज़्यादा लग्जरी की आदत नहीं थी, तो ये सारी चीज़ें उसे अच्छी भी नहीं लग रही थी, क्योंकि ये सब उसके लिए नया था। शाम तक नैना अपने कमरे की बालकनी में ही खड़ी रही, क्योंकि उसका वापस कमरे के अंदर आने का मन नहीं हुआ। कमरे की दीवारें उसे खुद को घूरती हुई सी लगती थीं, और शाम होने पर तो वो कमरे में भी नहीं गई, क्योंकि उस रूम का स्विच बोर्ड अभी भी खराब था और अक्षत ने अजय से बोला था, लेकिन आज शायद अजय को टाइम नहीं मिला या फिर ध्यान नहीं रहा होगा। और नैना ने भी बार बार एक चीज के लिए शिकायत करना सही नहीं समझा, क्योंकि उसका धर तो था नहीं, वैसे ही वो दूसरे के एहसान पर रह रही थी, तो उसने सोचा कि वो इतना तो एडजस्ट कर ही सकती है। ज्यादा डर लगेगा अंधेरे रूम में तो वो चुपचाप हॉल में सो जाएगी, वहां तो कितनी रोशनी होती है रात के वक्त भी। शाम के वक्त नैना अक्षत के इंतजार में हॉल में ही इधर से उधर टहल रही थी, और कुछ देर बाद उसे गेट पर कार रुकने की आवाज हुई तो वो काफी ज्यादा खुश हो गई, और बेल बजने से पहले ही भागकर दरवाजे की तरफ ही पहुंच गई। और दरवाजा खुलते ही उसे अक्षत तो नहीं वहां पर अमित आता दिखाई दिया, जिसे देखकर वो काफी उदास हो गई। नैना को ऐसे मायूस सा दरवाजे पर खड़ा देख अमित ऊपर से नीचे उसकी तरफ अजीब नजरों से देखता हुआ सोचा कि ये यहाँ पर दरवाजे पर क्यों खड़ी है, लेकिन फिर अपने कंधे उचकाता हुआ नैना के आगे से निकलकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। वो शायद अक्षत का कोई सामान लेने आया था, लेकिन नैना को जैसे अभी भी उसके पीछे अक्षत के अंदर आने की उम्मीद थी। लेकिन अमित ऊपर से उतरकर वापस भी चला गया और वहां कोई भी अंदर नहीं आया, तो नैना मायूस होकर वापस आकर सोफे में बैठ गई और अपना मोबाइल फोन निकालकर उसमें कुछ सर्च करने लगी। क्रमशः